مدہو و نسلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. سبق نمبر 199، آیت نمبر 45 سے 69، سورۃ العنکبوت. لیسن نمبر 199، آیت نمبر 45 to 69، سورۃ العنکبوت. 21 پارے کا یہ پہلا لیسن ہے. تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 45 سے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، اور نماز صحیح طریقے سے ادا کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. اور واقعی اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، پارے کی پہلی آیت، سبق کی پہلی. اگر اس سے پیچھے کی آیات کو دیکھیں تو مکڑی کی بات ہوئی تھی، جالوں کی بات تھی، اور کفر کے کمزور ہونے کی بات تھی. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ طریقہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کس طریقے سے کفر کے پھندوں سے بچ سکتے ہیں، کس طریقے سے مسلمان وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ان کی زندگی کا ہونا چاہیے. کیا مشرق میں رہیں کہ مغرب میں رہیں، کس کو چھوڑیں کس کو رکھیں، وہ تو بات کی بات ہے. کرنے کا کام کیا ہے کہ اتلو، آپ پڑھیے. لفظ اتلو کو دیکھیے گا، تلا یتلو تلون سے یہ لفظ ہے. تلاوت جو ہم لفظ بولتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے، اور فعل امر ہے، حکم ہے. یہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے ہم سب کو ایک پیغام دیتے ہیں، اور وہ کیا کہ اتلو، آپ تلاوت کیجئے. صرف اتنے سے لفظ پہ بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ تلاوت کرنا یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو ماننا ہے. کس چیز کی کرنی ہے؟ ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا. اوحی کا لفظ وحی سے ہے. وحی کہتے ہیں ایسے طریقے سے کسی کو بات پہنچانا کہ بات پہنچ جائے اور کسی کو خبر نہ ہو. خفیہ اشارے کو وحی کہتے ہیں، وسپر، سافٹ طریقے سے. وحی کا تعلق جب نبی کے ساتھ آتا ہے تو مراد ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی سے کلام کرتا ہے تو وہ وحی ہوتی ہے. اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جو آگے جا کے ہم سورہ شورہ میں پڑھیں گے. تین طریقوں سے اللہ کے نبی پر وحی آتی تھی. یہاں مراد ہے قرآن. صرف وحی کو قرآن تک رکھیں گے کیونکہ تلاوت کا لفظ ہے. شروع سے یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کی وحی ملی. ایک وحی مطلوب، میم تا لام واو، مطلوب، جس کی تلاوت کی جا سکے، یہ ہے قرآن. دوسری ہے وحی غیر مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت نہ کی جا سکے. وہ آج کے دور میں کیا ہے؟ حدیث. ہم جس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، عموماً قاری حضرات کرتے ہیں، اس طرح ہم حدیث کی تلاوت نہیں کر سکتے. تو یہاں پھر خاص طور پہ وحی کے ساتھ قرآن کا تذکرہ ہے، کیونکہ اتلو کی بات ہے. الیکا من الکتاب کہہ کر بات کو اور واضح کر دیا کہ کتاب میں سے بات پیش کیجئے. من یہاں تبیزیہ نہیں ہے، بعض کے لیے نہیں بلکہ بیانیہ. یعنی من کا معنی ہوتا ہے نا سم آف، من الناس، کچھ لوگ. تو اگر یہاں من کو بعض کے معنی میں لے تو مراد کہے کہ کتاب کی کچھ چیزیں پڑھ کے سنائیں، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد والی بات تو نہیں ہے. تو یہاں من بیان کے لیے. عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اسی کی ایک یہ مثال ہے کہ کھول کے بیان کرے، ایسے طریقے سے کتاب پڑھے. اور یہاں جو لفظ آیا الکتاب، تو کتاب کہتے لکھی ہوئی چیز کو. یہاں یہ قرآن پاک کے ایک نام کی طرح سے آیا ہے. قرآن پاک کا ایک تو اصلی نام ہے القرآن، باقی اس کے صفاتی نام ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا اصل نام اللہ، اور پھر صفاتی نام بہت سارے ہیں. تو کتاب کیوں کہا گیا قرآن کو؟ کیونکہ لوح محفوظ میں یہ لکھی ہوئی حالت میں ہے، اور فرشتے بھی اس کو لکھتے ہیں. کرام برارہ کا لفظ آگے ہم پڑھیں گے جا کے. اللہ کے نبی کو تو یہ قرآن سن کے ملا تھا، जिब्राइल के ज़रिए से अल्लाह ताला ने ये पैगाम आप तक दिया, लेकिन वैसे आपको कुरान तौर पे दिया गया कि आप इसको सुनते थे और आपको वो याद हो जाता था। और लफ्ज़ जो तिलावत है ना उतलू में, उसमें हमेशगी भी होती है, दवाम, ये नहीं कि कभी पढ़ लें कभी ना पढ़े, बल्कि पढ़ते ही रहे, मुसलसल पढ़े। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत मुतहरा थी कि जितना कुरान आपके ऊपर नाजिल होता रहता आप उसका दौर करते रहते, और जो ही कोई आयत आपके ऊपर नाजिल होती आप फौरन अपने सहाबे कराम तक वो आयत मुंतकिल करते, सहाबा भी आपसे सुन के याद कर लेते और अल्लाह के नबी को भी याद हो जाती थी आयतें। साथ ही दूसरा काम क्या है, वह अकीम सलाह, नमाज कायम कीजिए। अकीम का लफ्ज़ कौम कय्यम, पीछे हम पढ़ चुके, काफ वाव मीम या काफ या मीम, नमाज को कायम करें, और ये फ़ेले अमर है। अब थोड़े से आपको इसके फ़र्क मालूम होने चाहिए, कुम भी हुक्म है लेकिन अकीम पढ़िए, नमाज पढ़े, रीड इट डू इट के मानों में नमाज को सही तरीके से अदा करें। सवाल पैदा होता है कि नमाज कैसे कायम की जाए। पहली बात यह है कि दुरुस्त तरीके से अदा की जाए, किसी नक्स के बग़ैर जैसे नमाज अदा करने का हुक्म है वैसे अदा की जाए। कयूम के मानों में याद करें, वो आयतुल कुर्सी में हैयुल कयूम, थामने वाला ना, यानी नमाज कैसी हो, अला वजहिल कमाल, कमाल दर्जे की नमाज हो, इतनी खूबसूरत नमाज हो कि देखने वाले को मज़ा आ जाए, ज़ाहरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी शरायत को पूरा करें। नमाज की ज़ाहरी शरायत क्या है, नंबर एक अच्छा वज़ू हो, सजदा ठीक तरह किया जाए, रुकू क़याम सही तरह किया जाए, तहारत का ख्याल रखा जाए। इसी तरह बातनी शरायत क्या होती हैं, नंबर एक इखलास, सिर्फ़ अल्लाह के लिए, कोई दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, तहारत कल्ब हो, दिल पाक हो नेगेटिव चीज़ों से। फिर बातनी शरायत में अगली चीज़ आती है, रिस्क हलाल का एहतमाम हो। तो आप कह सकते हैं कि नमाज की जो शरायत है अल्लाह के लिए हो, दिल पाक हो, ज़ाहरी तहारत हो, और मर्दों के लिए तो ख़ास तौर पे लाजिम है कि जमात की नमाज हो, वक्त पे हो, तादील हो, यानी मुख्तलिफ आज़ाद जो काम करें उनमें बराबरी हो, यानी एक सजदा इतना लंबा और दूसरा पूरा भी ना करें, ऐसा ना हो एक रकत तो बड़े प्यार से पढ़ ली और दूसरी जो है वो उसको बस सर से बरा टाल दिया, फिर इंसान दिल के खुशू और खुजू से इसको पढ़े, हर मुख्तलिफ कोशिश करे कि किस तरीके से नमाज अदा की जाए। अब देखिए कि पीछे अनकबूत के ज़रिए गैर अल्लाह के सहारे कमज़ोर दिखाए गए, यहाँ वो दो चीज़ें बता दी जो एक बंदा मोमिन को मजबूत करती हैं, तिलावत कुरान और इकामत सलात, ये है वो दो चीज़ें जो वाकई मुश्किलात को आसान करती हैं। कुफर के जाले, कुफर के सहारे कब कच्चे होंगे, जब मुसलमानों की नमाजें जिंदा होंगी और मुसलमान इस कुरान को लेकर निकलेंगे। अल्लाह ताला ने आगे नमाज का और एक असर भी बता दिया कि नस्सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और मुनकर से। यहाँ देखिए कि नमाज का असर बता दिया, जो नमाजी होगा ना वो फुहश और मुनकर के करीब तक नहीं जाएगा, और पीछे हम पढ़ चुके कि फुहश हर बुरा फेल और कॉल जिससे खुल्लम खुल्ला बुराई दिखे, क्लियर एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये चीज़ बुराई है, और इतनी वाजे वो बुराई हो कि मोमिन हो काफिर हो अकल वाला हो या ना हो वो उसको बुराई समझे, मसल जिना, कत्ले नाहक, चोरी डाका वगैरह। और मुनकिर क्या है, वो कॉल और फेल जिसके हराम और नाजायज होने पर अहले शरा का इत्तेफाक हो, यानी मुनकर में वो चीज़ है जिसका इनकार इंसान की अकल भी करे और शरीयत भी करे, अननोन किस्म की चीज़ें, अजनबी, स्ट्रेंजर, यानी बरहना होना, नंगा होना, ये मुनकर है, अकल ही नहीं मानती कि इंसान नंगा फिरे। गोया कि आप कह सकते हैं कि फुहश और मुनकर में जाहरी और बातनी सारे गुनाह आ गए जिसके अंदर कोई भी इंसान इंडल्ज हो सकता है। अब आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हुक्म दिया गया था उतलू का, आप लफ्ज़ उतलू का दूसरा तर्जमा क्या करेंगे, कि अल्लाह के नबी को जो तिलावत का हुक्म दिया गया ये कौन सी तिलावत है, लोगों को रोको और तिलावत सुनाओ, بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ ہے. تلاوت کے اندر صرف لفظوں کی تلاوت نہیں ہوتی، معنی کی بھی تلاوت ہوتی ہے. اس آیت میں اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم سب کو بھی بتا دیا کہ تم لوگ اگر کفر سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ کے اس کلام کو گھر گھر پہنچا دو، اس کی تلاوت کرو. جس دور میں اللہ کے نبی آئے تھے وہ کوئی آج سے زیادہ اچھا دور نہیں تھا. آج تو کوئی بیٹیوں کو بھی قتل نہیں کرتا، آج تو کوئی اس طریقے سے بالکل سر عام برہنہ ہو کر بھی حرم کے اندر جا کے طواف نہیں کرتا. وہ اس سے برا دور تھا، یقین کریں اس سے بہت زیادہ برا دور تھا. ہمیں یہ کیوں زیادہ برا لگتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے. تو یہاں پھر دو کام بتا دیے جو دعوت کے راستے میں بہت مددگار ہیں. سورت مزمل میں اس کی زیادہ تفصیلات آئیں گی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا کی آیت آتی ہے اس میں کہ اٹھیے ابلاغ کریں، لیکن راتوں کو اس میں اللہ سے ذکر کی انرجی لے کر آئیں. سورت عنکبوت جو ہے یہ سورت الفتن بھی ہے کہ فتنوں اور آزمائشوں کے اندر انسان کیا کرے. آپ دیکھیے کہ کچھ دیر اگر ہم قرآن سے دور رہتے ہیں نا تو دل پر جالے آنے لگتے ہیں، سستی آنے لگتی ہے، نکاہت آنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں، اگر واقعی آج تم پر وہ وقت آ چکا ہے کہ تمہیں چاروں طرف کفر کے جال بنے ہوئے دکھتے ہیں، تو آؤ اقیم الصلاح، نماز پڑھو. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب کو سمجھو، پہلے اس کی لفظی تلاوت کرو، پھر اس کی قولی تلاوت کرو، پھر عملی تلاوت کرو. چلتے پھرتے اتنے خوبصورت مسلمان بن جاؤ. یقین کریں کہ یہ ہیں وہ دو چیزیں جو غیر اللہ سے بے نیاز کریں گی. آپ کوئی کام کر نہیں سکتے. آپ میں سے بہت سارے ساتھی اس وقت یقیناً دل کی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کلاس کے بعد یا اگلا پچھلا وقت بھی اللہ کے لیے لگا دے. یہ میرا گمان ہے، کیونکہ قرآن سن سن کے بندے کا دل تڑپتا ہے، وہ روتا ہے، اندر سے چیختا ہے، لیکن کیوں نہیں کر پاتے؟ نمازیں کمزور ہیں. آپ میں اپنی نمازوں کو دیکھیں. اب یہ آخری 10 پارے دوسروں سے زیادہ اپنی فکر کے رکھیں. میری نمازیں کیسی ہیں؟ میرا تعلق باللہ کیسا ہے؟ میرا قرآن کا فہم کیسا ہے؟ بظاہر وہ کوئی بیٹا بیٹی کھڑا ہوتا ہے ہمارے سامنے روکنے والا، وہ ہمارے شوہر ہوتے ہیں، وہ ہمارا خاندان ہے جو ہم سے اللہ والے حق بھی لینا چاہتا ہے، لیکن اصل میں وہ ہماری نماز اور ہمارے قرآن کے فہم سے کمی کی دلیل ہوتی ہے. جتنا آپ اللہ سے جڑتے جائیں گے نا، اتنے راستے کے سارے پتھر ہٹتے جائیں گے. لوگ کہتے ہیں اس کے کیا ماتھے لگنا ہے، پیچھے ہو جائے، اس کو نہ منع کرو، اس کو کیا کہنا ہے، یہ تو پتھر ہے، اپنی جگہ سے ہلے گئی نہیں. ترن والا میں لوگ کب بناتے ہیں؟ جب ہمارا تعلق باللہ کمزور ہوتا ہے. وہ شاعر نے کہا نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ آشنائی کیا ہے؟ یہ اللہ کی معرفت ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے، اور یہ دو ذریعے سے ہی آتی ہے، ایک قرآن اور ایک نماز. قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتا ہے، اور نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. اگر ان دو میں سے ایک چیز چھٹ جائے، توکل نہیں کرنا آئے گا، آزما کے دیکھ لے. اگر ابھی بھی دل گھبراتا ہے نا، اگر ابھی بھی دل پریشان ہے نا، ابھی بھی یہ ہے، ابھی بھی وہ ہے، تو سمجھے کہ کمی اندر ہے. اپنے آپ کو چیک کریں، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو کوئی تنگ کرے نا، کوئی آپ کو روک رہا ہے، مت جاؤ کلاس میں، ختم کر دو، اس کو کچھ نہ کہیں، سیدھا جائیں اسی کے سامنے، فوراً جائیں وضو کریں، جائیں نماز پہ کھڑے، پھوٹ پھوٹ کے روئیں. یقین کریں آپ کے وہ دو نفل اس بندے کے دل کو پگھلا کے رکھ دیں گے. میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گی، میرا شکوہ میرے رب کے آگے، اے اللہ تو مجھے بتا میں کیسے سیکھوں، میں کیسے سکھاؤں، دنیا تو مجھے نہیں بڑھنے دے گی. یقین کریں کہ 2-4 دفعہ اگر آپ نے ایسا کر دیا نا، تو لاشعوری طور پہ لوگ آپ کے راستے سے نکل جائیں گے، کہیں گے پتہ نہیں یہ مجھے کوئی بد دعائی نہ دے دے. بعض لوگ تو پھر آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کے گھبرائیں گے کہ پتہ نہیں یہ میرے خلاف کوئی باتیں کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو پھر جما دیتی ہے. اور کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دی کہ والا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر بڑی پیاری چیز ہے. دیکھیے یہ اللہ کی یاد ہی تو ہے جو دل کے پیالے میں ڈال کے لے کے جائیں گے، ورنہ عمل تو ہے ہی کچھ نہیں. کسی کو یاد کرنا ہو تو اظہار کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ کو یاد کرنا ہو صرف دل ہی دل میں کر لے. جتنا آپ کی زندگی میں اللہ کا لفظ اہم ہو جائے گا نا، आप देखेंगे कि सारी रुकावटें दूर होती जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में आता है कि जब भी कोई आपको मुश्किल होती आप फौरन नमाज पे जाते, जाए नमाज की तरफ होते। इसमें नफिल नमाजों की बात है, ना कि फ़र्ज़ की। आप देखें कि अल्लाह के नबी इतनी लंबी रात को तहज्जुद पढ़ते थे, तीन तीन चार चार घंटे बनते हैं हमारे हिसाब से। इतना कुरान पढ़ते होंगे, हम कितना पढ़ते हैं? हम कहते हैं पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। वो तो अखबार पढ़ी जाती है। तदब्बुर तो पलट पलट के आने की बातें, और तदब्बुर के लिए फहम ज़रूरी होता है। तो लिहाजा हम सब अपने आप को यहाँ तैयार रखें इस बात के लिए कि अल्लाह तू हमें समझ दे, हमें तौफीक दे, हमारे दिल में वो एहसास डाल दे कि हम क्या खो रहे हैं। वो एक शेर भी है ना कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से जियां जाता रहा। ये अफसोस नहीं है कि हम नाकाम हैं, अफसोस ये है कि नाकामी का एहसास ख़त्म हो गया है। पता नहीं वो कौन सी सुबह होगी जब बंदा मोमिन की बेखबरी और बेहिसी का तिलसम टूटेगा। कब वो खुद को पहचानेगा, कब वो अल्लाह को इसकी कायनात के अंदर फैली हुई निशानियों से पहचानेगा, कब वो बंदों को अल्लाह से जोड़ेगा। आज वो तड़प मांगने की ज़रूरत है जो अल्लाह के नबी के दिल में थी, वो अफसोस मांगने की ज़रूरत है जब वो बकर सिद्दीक के दिल में इस्लाम के लिए था। फिर देखें कि हमें नमाज़ें भी फ़ायदा देंगी और इंशाल्लाह कुरान भी फ़ायदा देगा। अभी शायद में चंद सवाल जहनों में उठते हैं कि पहली बात तो ये है कि यहाँ कहा गया कि इन्न सलाता तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पक्के नमाजी भी हैं और मुनकर और बेहयाई से फिर नहीं रुकते। नमाजों के वक्त में मस्जिद में होते हैं और घर आते ही रास्ते में दो फिल्में पकड़ी होती हैं जो मस्जिद के साथ वाली दुकान से मिलती है। फिर ये क्या कॉम्बिनेशन है? तो इसका एक जवाब तो ये है कि नमाज रोकती है, हुक्म तो नहीं देती। तनहा कहा, तामुर नहीं कहा गया। यानी नमाज ये तो कहती है कि बुरे काम ना करो, लेकिन हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती तो बंदे का हाथ नहीं ले जाती ना उधर, रोकती तो वो है। अब कोई ना रुके तो फिर उसकी मर्ज़ी। एक तो इसका ये मतलब है। दूसरा इसका मतलब क्या है तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर का, कि नमाज का एक इफ़ेक्ट है। असर क्या है कि नमाज बंदे के दिल से गुनाहों की रग़बत कम कर देती है। एक शख्स नबी सल्लम के पास आया और ज़िक्र किया कि फ़लाँ शख्स रात को तहज्जुद भी पढ़ता है, जब सुबह होती है तो चोरी करता है। आपने फरमाया कि अन करीब नमाज उससे चोरी की आदत को ख़त्म कर देगी। और बाज़ रिवायात में आता है कि अल्लाह के नबी के इस इरशाद के बाद वाकई वो शख्स अपने गुनाहों से फिर गया, या अबू हुरैरा की रिवायत है। फिर इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि जिस शख्स की नमाज ने उसको अमल सालेह पर अमल करने और मुनकरात से रोकने पर आमादा नहीं किया, तो ऐसी नमाज उसे अल्लाह से और दूर कर देती है। पता कैसे दूर होता है बंदा? और जी नमाज़ें तो पढ़ते हैं ना, अब और क्या करें? 5 वक्त नमाज हम पढ़ लेते हैं और ना पूछो। मैंने देखा है कि कई वाकई पक्के नमाजी होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बंद करके चाहे नमाज, अब तसल्ली है कि अब 5-6 घंटे जो चाहें देखें, जो चाहें बोलें, जो मर्जी करें, नमाज तो पढ़ते हैं, फिर वो और ही दूर होने लगता है। एक और रिवायत है अब्दुल्ला बिन मसूद से, तब से सल्लम ने फरमाया ला सला तलिमल्लम युत सलाह। इब्ने जरीर की यह रिवायत है कि उस शख्स की नमाज ही नहीं है जिसने अपनी नमाज की एतात ही ना की हो। और नमाज की एतात करना क्या है कि फ़ुहश और मुनकर से रोकना। यानी नमाज रोक रही है आपको मुनकर से फ़ुहश से, और आप नहीं रोके तो गोया कि फिर वो आपकी नमाज नहीं हुई। लेकिन देखें कि हर चीज़ का एक असर होता है ना। कोई खाना खाते हैं तो उसकी तासीर होती है ना, कोई गर्म तासीर है, कोई ठंडी है, कोई बादी है, कोई हाजिम है। इसी तरह बहरहाल नमाज बंदे को पकड़ लेती है। सारी ज़िंदगी बंदा पढ़ता रहे ना रुके, एक वक्त आता है कि फिर उसको शर्म आने ही लगती है। अल्लाह वालों की पहचान बता दी कि वो फुहश और मुनकर से दूर हैं और ज़िक्र कुरान और नमाज के करीब होते हैं। अब हम अपना भी मामला देख सकते हैं खुद ब खुद कि हम किस दर्जे पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला अब हमें अपनी नमाज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, ज़रूरत है। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो अभी तक 5 वक्त की नमाज भी नहीं पूरी कर रहा। सही पढ़ना तो दूर की बात है, अगर है तो खुद पे तुफ करे, खुद पे मलामत करे कि मैं अभी तक 5 वक्त की नमाज ही नहीं पूरी कर सकी, मेरी बात किसने सुननी है? क्यों आएंगे लोग मेरे पास, क्यों मेरी बात सुनेंगे? 100 नंबर भी आ जाते हैं ना आपके 100 में से, फिर भी तुफ है अगर नमाज सही नहीं है। इसके बाद की अगली नमाज जो है ना हमारी इस तरह की नमाज होनी चाहिए कि वाकई वो हमारे दिल के अंदर गुनाहों की रग़बत ख़त्म कर दे। ठीक है, वक्त लगता है, लेकिन एक वक्त आता है कि एक इंसान फिर बाज़ दफ़ा सुन सुन के भी सुन हो जाता है ना, तो अल्लाह ना करे कि हमारे साथ ऐसा हो कि हमारी नमाज इसका आगाज़ भी गफलत से हो, इंतहा भी गफलत से हो, बीच में जो पढ़ा उसका नहीं पता, कितनी रकतें पढ़ी ये नहीं पता, क्या पढ़ा था, किसके आगे खड़ा हूँ, किस तरह का हाल है नहीं पता चलता। तारीख में आता है कि एक लड़का एक लड़की के चक्कर में था, उससे ख्वाहिश का इरादा किया, कहने लगी कि तुम मेरी एक शर्त मान लो मैं तुम्हारी बात मान लूँगी। क्या? कहने लगी कि तुम हज़रत उमर के पीछे 8 दिन नमाज पढ़ो जमात से, फिर जो कहोगे मैं कर लूँगी। कहा ये कौन सी बड़ी बात है, 8 ही तो दिन है। गया, एक दिन गया, अगर 4 चक्कर लगाता था उसकी गली के तो शायद 3 लगाए उस दिन। फिर 2 दिन गुजरे तो 1-2 चक्कर और फिर लड़का ही गायब। कुछ अरसे के बाद दोबारा देखा, हाल हुलिया बदल गया। कहने लगी तुम वही हो जो मेरी गलियों के चक्कर लगाते थे। कहा हाँ। कहा तुम किधर गए? कहने का देखो एक लड़का लड़की से इस तरह बात नहीं कर सकता तन्हाई में, काम की बात करो। कहने की इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? कहने लगा कि वो नमाजें जो मैंने उमर फारूक के पीछे पढ़ी उन्होंने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। इन्न सलात तन्हा अनिल फख्शाई वल मुनकर। सोचने की बात है, हम अपने घरों के माहौल को देखें, सेटअप को देखें, जिस सलीके से जाए नमाज तय करके एक अलमारी में रखे होते हैं, इसी तरह सलीके से हमने फुहश और मुनकर के भी इंतजाम करके रखे होते हैं। ये मोमिनों के घर नहीं हो सकते, ये मोमिन का दिल नहीं हो सकता कि उसको फुहश अच्छा लगे। अगर अभी भी रग़बत लगती है ना इन चीज़ों में तो कमी नमाज में। नमाज रोकेगी कब? जब वो सारी शरायत पूरी करेगी जो आगाज़ में बता दी। वाला जिक्रुल्लाह ही अकबर, ये जुमला तो इतना प्यारा लगता है। लोगों, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है। इससे बड़ी सआदत क्या है कि किसी को अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह की मोहब्बत करने वाला बना दे, अल्लाह ताला का शुक्र करने वाला बना दे। बुखारी की एक रिवायत में है कि अगर कोई शख्स याद इलाही में मसरूफ़ रहने वालों के पास आकर बैठ जाए, अगरचे वो किसी दूसरे मकसद के लिए आया हो, तो अल्लाह ताला उसके भी गुनाह माफ़ कर देता है और फरमाता है गफर तुहुमुल कौम ला यश्की बिहिम जलीसुहुम। मैंने उनकी मजलिस में बैठने वालों को भी माफ़ कर दिया, मेरी याद करने वाले ऐसे लोग हैं कि इनके पास बैठने वाला भी बदबख्त नहीं है। लेकिन याद रखिए कि जिक्र करना वैसे ही है जैसे करने का हुक्म है, और सबसे बेहतरीन जिक्र क्या है अल्लाह का? कोई दलील देगा कुरान से? सूरह हिजर की आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। बेशक हमने ये जिक्र नाजिल किया, कुरान है बेहतरीन जिक्र। हम जिक्र के लिए मनगढ़ंत तरीके बनाएं, चिल्ले काटें, घेर डाल के बैठ जाएं, वो नहीं। जिक्र वही है जो कि अल्लाह के नबी ने किया, तरीका भी, और बेहतरीन जिक्र कुरान का जिक्र है। हज़रत इब्ने उमर से एक रिवायत आती है, फरमाते थे जिक्र इलाही में कोताही न करो, तुम इसको याद करोगे वो तुमको याद करेगा, इसका तुम्हें याद करना तुम्हारे जिक्र से अफजल है। दूसरे पारे के शुरू में भी हमने आयत पढ़ी थी, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो मैं तुमको याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो ना शुक्री ना करो। अब इसके बाद एक और मरहला जो तबलीग के या दावत के रास्ते में आता है उसी का इशारा है। अब देखेंगे कि अब ये आखिरी लेसन है सूरह अनकबूत का, और जैसा कि शुरू में मैंने अर्ज़ किया था कि सूरह अनकबूत मक्की माहौल की बेहतरीन तर्जुमानी करती है। घर घर में आग लगी हुई थी, घर घर में मुखालफतें थी, आजमाइशें थी, अब करें तो क्या करें। पहले बता दिया कि दाई को खुद अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना है, अब आगे दावत के कुछ मज़ीद एटिकेट्स बताए गए। वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिय अहसन। अरे मुसलमानों, बहस मुबासा न किया करो अहले किताब से मगर शाइस्ता तरीके से। सिर्फ इस चीज़ से एग्जेम्प्ट कौन है? इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, मगर वो जिन्होंने जुल्म किया इनमें से। वकूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना, और तुम कहो कि हम ईमान लाते हैं इस पर जो उतारा गया हमारी तरफ। व उन्ज़िला इलैकुम, और जो उतारा गया तुम्हारी तरफ। व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन, और हमारा और तुम्हारा खुदा तो एक ही है। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम तो उसके सामने गर्दने झुकाने वाले हैं। यहाँ देखिए कि बहस मुबाहसे से रोकने की बात है और लफ्ज़ आया है अहले किताब। सूरत है मक्की, अहले किताब तो थे मदीना में, तो यहाँ अहले किताब क्यों है? इसकी दो तीन मुख्तलिफ तौजीहात हैं। पहली बात यह है कि बाज़ कहते हैं कि यहाँ निजाशी और उसके लोगों से ताल्लुकात या बात करने की तरफ इशारा है। हिजरत हफ्शा के नतीजे में वहाँ इंट्रैक्शन हो चुका था। दूसरी बात इसकी क्या है कि मक्का वाले भी मदीना के यहूद से जाकर मशवरे लेते थे, और कभी कभी मदीना से यहूद भी आ आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ना कुछ पूछा करते थे। तो हर वक्त का ताल्लुक तो नहीं था अहले किताब से, लेकिन कुछ तो था ही। और दूसरी बात एक और है कि एक और वक्त तो आने ही वाला है ना, जब मदीना में जाने के बाद बहुत सारे लोगों से मामला होगा, तो लिहाजा इससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अहले किताब का लफ्ज़ क्यों है। दूसरी बात यह है कि यहाँ अल्लाह ताला मुसलमानों को जो अदब सिखा रहा है वो बहुत प्यारा है, और वो क्या है कि तुम्हारी गुफ्तगू में तहजीब और शाइस्तगी नज़र आनी चाहिए। अमूमन मजहबी गुफ्तगू में आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं, क्योंकि जिस बात पर ठेस पड़ती है ना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ईमान वालों तुम्हारी आवाज़ नर्म होनी चाहिए, तुम्हारा रवैया ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, गुस्सा ना दिलाया करो ना गुस्से में आया करो, होगा क्या फिर बात करना छोड़ दोगे। आप देखिए कि यहाँ हमें भी सिखाया गया है कि जब कोई खिलाफ शरीयत काम करे हमारे घर वालों में से या घर के बाहर से, क्या किया जाए? चीखे, चिल्लाएं, शोर मचाएं, तुम वैसे, तुम खराब, तुम्हें तो ये, तुम तो नहीं। किल विद काइंडनेस, नरम बात दिल में उतरती है। आप देखिए जो हल्की हल्की बारिश पड़ती है ना, वो सारी ज़मीन के अंदर जाती है, लेकिन जो बारिश एकदम तेज़ी से बहती है ना, वो बाज़ दफ़ा ज़मीन का ऊपर का जरखेज़ हिस्सा भी बहा के ले जाती है। बहुत सारे लोगों में खैर होती है, लेकिन हम इतने स्टबन तरीके से और इतने गलत तरीके से उनसे बात करते हैं कि वो चिढ़ में आ जाते हैं। जो अल्लाह ने सलीका सिखा दिया किल्लल्लज़ीना ज़लमू मिन्हुम, ठीक है, अगर कोई इस हद तक जुल्म पे आ गया, इस हद तक तुम्हारे साथ ज्यादती करने लगा, जैसे मक्का में रहते हुए मक्का वाले कर रहे थे, या यहूद अगर इस तरह की खराबियां पैदा करते थे जिससे इंसान अपने आप को दीन से दूर समझे, तो वो और बात है, लेकिन आम हालात में तुम्हारा अखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। आप देखिए कि करें क्या, आसन लफ्ज़ पे थोड़ी सी बात करूँगी, इल्ल बिल्लती ही आसन। इस क्लासरूम में बैठ के आसन लफ्ज़ को समझना बहुत आसान है, लेकिन जब कहीं जाके प्रैक्टिकली हमें हालात पेश आते हैं ना, कि आप किसी को कहते हैं नमाज़ पढ़ो, आगे से वो पढ़ता ही नहीं, आप कहते हैं गाने ना सुनो, वो सुनता ही नहीं और आवाज़ ऊंची करता है, उस वक्त आसन होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो ज़रूरत है इस बात की कि जब आम हालात हों मुसलमानों के, जब ज़िंदगी के आम मामूलात हैं, दरसोवाज़ हो रहे हैं, तबलीग हो रही है, उस वक़्त तो बात बड़ी नरम हो, बड़ी मिठास हो, बड़े तरीके से। जैसे आप देखिए, हम कुरान पढ़ रहे हैं इस वक्त, नसीहतें ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त कोई गुनाह के करीब से नहीं गुजरे, या हमारे इर्द गिर्द लोग दीन वाले ही मौजूद है ना, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे ना, तो उस वक्त गुफ्तगू बड़ी नरम होनी चाहिए। लेकिन अगर इल्लल्लज़ीन ज़लमू मिनहुम, किसी को हम गलत काम करता देखें, मसलन आप अपने बच्चों में, अपने घर वालों में कोई खराबी देखे, उस वक़्त टोन बदल जाएगी। फिर उस वक़्त भी कहना प्यार से, नहीं बेटा नहीं, ऐसे एक हद होती है। जब माँ बाप की टोन या घर वालों के साथ हमारा मामला गुनाहों पे खामोशी का हो जाता है ना, और कॉम्प्रोमाइजिंग का होता है, तो लोगों को अपने उस गुनाह का एहसास ही मिट जाता है। फ़र्क समझ लें दोनों को, आम हालात में आसन, ठीक है, लेकिन अल्लज़ीन ज़लमू मिनहुम, उनके मुकाबले में टोन ज़रा सख्त होगी। मुख्तलिफ तरीके से आप बात कर सकते हैं। बस आप देखिए कि कोई शख्स बुरा काम करता है ना, अब आपको क्या कहा गया कि आप वहाँ क्या करें? सूरह फुरकान में क्या कहा, व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम। पहला दर्जा क्या हो सकता है कि बात करना छोड़ दें, उस जगह को छोड़ दें। अगर बात हद से ज़्यादा बढ़ेगी ना, तो तशद्दुद पे आएगी। अगर बात करने से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना, बात को छोड़ दें। हमें गुस्सा कब आता है? जब किसी को बुरा काम करते देखते हैं, थोड़ी देर गुजरती है हम भी भूल जाते हैं, फिर कहते हैं आओ बेटा बर्गर बना दूं, ये गलत तरीका है। खूबसूरत तरीका क्या होता है कि किसी को गलत काम करता देखें, अपनी टोन से समझाएं कि आपको बुरा लगा, वहाँ से उठ जाएं, नागवारी का इजहार करें, उसको इग्नोर करें, वो उस वक्त आपको कोई ऑफर करे, फरमाइश करे, नो थैंक्स, बिल्कुल बावकार तरीके से हट जाए। उसके बाद जब उस बंदे को आपकी ज़रूरत पड़े ना, फिर आप बदला लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस दिन आप अपने बच्चे का खाना पका के रखें, उस दिन आप उसके लिए उसी तरह ड्रेस सजा के उसके कमरे में रखें कि चलो भाई अब तुम खा लो। कोई भी हो सकता है, शौहर है, बीवी है, बच्चे हैं। जब आप खामोशी के साथ दूसरों को एहसास दिलाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसका असर ज़्यादा होता है, क्योंकि इस्लाम में बड़ी ताकत है। दलील खूबसूरत होती है ना, तो बात मानने में लोगों को मुश्किल नहीं होती। बाज़ दफ़ा बदकलामियों से, सख्त कलामियों से हम लोगों को सख्त कर देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुलु आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना, कह दो हम उस पर ईमान लाए जो हम पर उतरा यानी कुरान, व उन्ज़िला इलैकुम तुम पर उतरा यानी तौरात और इंजील, वो भी अल्लाह की तरफ से उतरी थी, व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिद, हमारा और तुम्हारा खुदा तो एक ही है यानी अल्लाह ताला, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम तो उसी के आगे गर्दने झुकाने वाले। ये है खूबसूरत तरीका कि जो चीज़ उनकी आपके साथ मिलती है ना, उसको ले लें। माँ उन्ज़िला इलैना में तो कुरान है, और उन्ज़िला इलैकुम में क्या है जो उतरा। अब सवाल पैदा होता है कि क्या आज के दौर में भी हम कह सकते हैं कि तौरात और इंजील पर ईमान है? तो यहाँ लफ्ज देखिएगा, माँ उन्ज़िला इलैकुम जो तुम पर उतरा, यानी आप कह सकते हैं कि जो मुनज़्ज़ला अलैकुम था उस पर तो ईमान है, लेकिन जो मुबद्दला हो गया उस पर ईमान नहीं है, जो तुमने बदल दिया। आज के दौर में तौरात और इंजील के अंदर हम कैसे ईमान की बात करते हैं कि भाई इस किताब का जो हिस्सा मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है उसको तो मानेंगे, लेकिन जो मुबद्दल हो चुका, बदल दिया, मुख्तलिक हो चुका, जिसको तुमने घड़ दिया, उसको नहीं मानेंगे। लेकिन देखिए कि इसका ये मतलब नहीं है कि आसान तरीके से बात करें तो उनके गलत को भी मान ले कि हम में और तुम में तो अब कोई फ़र्क ही नहीं। फ़र्क तो है, लेकिन ये फ़र्क पता किसको चलेगा? जो कुरान पढ़ेगा। तो बात का खुलासा क्या है कि जो लोग अपनी किताब को जान लेते हैं, व नहनु लहू मुस्लिमून का दावा कर लेते हैं, फिर उनको दूसरों की बातें खूब अच्छी तरह समझ आती हैं। आप देखिए कि दो ही तरह के लोग होते हैं, जो मखसूस किताबों को मानते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो हर किताब को मानते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हो। और नहनु लहू मुस्लिमून से फिर वही बात मिल रही है कि हम मुसलमान हैं और कुछ नहीं। कल मुझे किसी ने एक PM में सवाल पूछा हुआ था स्टूडेंट्स की तरफ से, कि कोई नाम लिया उन्होंने, मैं नहीं लेती इधर, लेकिन इस्लाम से अलावा कोई नाम था, यानी जो एक फ़िरका अपने आप को कहलाता, और उनके कुछ लिखे कि क्या मैं उधर जा सकती हूँ और उनकी बातें सुन सकती हूँ। मैंने सिर्फ आधी लाइन में उसको जवाब दिया। मैंने उसको लिखा कि मुझे ये पता है कि जो खुद को मुस्लिम के अलावा कुछ और कहलाता है ना, उसमें ज़रूरी बात सुनने से कुछ हटी होती है, तो आप खुद डिसाइड कर लें। यानी कोई अपने आप को कोई भी कह दे, कोई ब्रेलवी कहता है, कोई वहाबी कहता है, कोई सुन्नी कहता है, कोई सूफीज़म कहता है, कुछ भी कहे, जब इनमें से कोई नाम आप लगाएंगे ना, तो ज़रूर कोई ना कोई चीज़ सुन्नत से हटी होगी। तो मैं तो नहीं इस चीज़ का मशवरा देती कि आप सुन्नत से हट के कोई काम करें। तो सिंपल सी बात है, नहनु लहू मुस्लिमून, जो बंदा अपने आप को मुसलमान कहता है, इंशाअल्लाह ताला वो आपको प्योर चीज़ देगा, बाकी कहीं ना कहीं अपनी किसी बात को लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, हो जाता है। सही बुखारी की एक रिवायत है कि अहले किताब इबरानी में तौरात पढ़ते और लोगों के सामने अरबी में पढ़ते, लोग शशोपंज में मुबतला हो जाते क्योंकि उनको हिब्रू ज़ुबान नहीं आती थी। क्या करें क्या ना करें, अल्लाह के नबी से आके पूछा गया, तो आपने फरमाया कि ला तुसद्दिकु व ला तुकज़्ज़िबु, ना अहले किताब की बातों की तस्दीक करो और ना तकजीब करो, बल्कि उस पर ईमान ले आओ जो अल्लाह ने हम पर और तुम पर उतारा। और सूरह नहल की आखिरी आयतों में हम तफसील से ये बात देख चुके के बंदा मोमिन के पास सबसे बड़ी कुव्वत दलील की कुव्वत होती है। दलील सख्त हो, कलाम नरम हो, क्योंकि दलील की गर्मी लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। मसलन आज के दौर में सूद पे जब बात करें, तो सूद के बारे में 3-4 तो दलाइल सिर्फ कुरान की 2-3 आयतों में मिलते हैं। अब अगर कहने वाले की आवाज़ भी इतनी सख्त होगी ना, तो बास लोग इतना प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते। जुबान शीरी मुलगिरी, नरमी से गर्म दलील को पेश कर दो। देखिए इंजेक्शन लगता है ना, उसकी तो अपनी बड़ी दर्द है, लेकिन अगर लगाने वाले के हाथ भी सख्त हों, शिद्दत से वो नर्स लगा रही है, तो तकलीफ़ ज़्यादा होगी ना। तो डॉक्टर्स की तरह हाथ बड़े नरम रखें, ज़ुबान नरम रखें, लेकिन दलील नरम ना करें। बाज़ लोग जब ज़ुबान की नरमी की बात सुनते हैं, तो वो दलील नरम कर लेते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है। कोशिश करनी है कि अग्रेसिव ना हो, फर्म हो लेकिन बद अख्लाक ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह जिसके दिल में डालेगा उसको ज़रूर समझ आएगा।